किया तू क्या चल ने बाबा बसा लो किरणों की बाहों में हमको समालो यादों के आंचल में बाबा बसा लो किरणों की बाहों में हमको समालो तुमसे तनिक दूर जाए ना हम भूले से भी भूल पाए ना हम यादों के आंचल में बाबा बसा लो किरणों की बाहों में हमको समालो
ओम शांति। आज सारा दिन आप सभी ने कैसा अनुभव किया? ऐसा तो नहीं कि सुनते सुनते थक गए हैं, ऐसा तो नहीं है? या ऐसा लगता है कि यहाँ आते हैं बहुत माल खजाना मिलता है? जैसे बाबा कभी कहते हैं ना, बच्चे स्टीमर आते हैं वक्खर भर के जाते हैं और फिर डिलीवर करने के लिए, बाबा की मुरली में आता है ना ये बात। तो ऐसे ही यहाँ हम आते हैं, इतना अपने आप को भरपूर कर लेते हैं जो हमें साल भर के लिए काफी कुछ मिल जाता है। तो हमारे जब रात की क्लास होती है तो ऐसे तो नहीं थक गए, सारा दिन बहुत सुना बहुत योग लगाया, लेकिन नहीं, हम हमेशा एक बात कहते हैं, वो है कि भट्टी सेलिब्रेशन है। हम लोग समझते हैं जन्मदिन मनाना, हाँ कोई एनिवर्सरी मनाना वो सेलिब्रेशन है, पिकनिक मनाना वो सेलिब्रेशन है, लेकिन एज सच भट्टी एक सेलिब्रेशन है। और वो सेलिब्रेशन कैसी है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि बच्चे अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो जिसे इस अतीन्द्र सुख का अनुभव है, जिसको ब्राह्मण जीवन की मौज का अनुभव है, तो उसके लिए भट्टी जो है वो सेलिब्रेशन है। केवल ऐसा नहीं, जैसे मैं आपको कल भी कह रही थी कि योग लगाना माना, ऐसा नहीं कि हम बहुत बहुत सीरियस बहुत गंभीर गंभीर हो जाएं, चेहरा भी बड़ा गंभीर, कोई बात करने से भी सोचे कि बात करूं क्या नहीं करूं, हाँ ऐसा नहीं है योग का मतलब, क्योंकि हमारी योगी लाइफ है, हमारी योगी जीवन भी है और योगाभ्यास भी है। आज का विषय यही है ना, बाबा ने हम बच्चों को कौन सा टाइटल दिया, हम राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। और जब हम योगी जीवन की बात करते हैं तो जीवन तो हमेशा के लिए होती है, और जब योगी जीवन कहते हैं इसका मतलब क्या है कि योगी जीवन के जो नियम हैं वो जीवन भर के लिए हैं, जीवन पर्यंत है। जैसे आज गीता बहन भी सुबह अभी शाम को सुना रही थी कि फरिश्ता मेरी लाइफ स्टाइल है, इसी प्रकार योगी इससे लिविंग स्टाइल। हमारा कोई रिचुअल्स की तरह से, रीति रसम रिवाज की तरह से कोई एक घंटा योग लगाना या दो घंटा योग लगाना, वो कोई योगी जीवन नहीं है, लेकिन ये हमारी एक लिविंग स्टाइल है कि हम योगी जीवन जीते हैं, जिसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं जिनको मैं फिर से दोहराऊंगी नहीं, जो उसको थोड़ा सा गीता बहन ने भी अपनी क्लास में मेंशन किया, हमारा खान पान, हमारा रहना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बातचीत करना, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। ये योगी जीवन है। तो योगी जीवन भी चाहिए और योगा अभ्यास भी चाहिए, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर योगाभ्यास करेंगे तो हमें योगी जीवन में मदद मिलेगी, और योगी जीवन होगा तो योग लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के सहायक भी हैं और एक दूसरे को मदद भी करते हैं और हमारे जीवन के अंदर जरूरी भी हैं। लेकिन हम देखते क्या हैं कि जैसे कहते हैं योगी कौन होते हैं, योग लगाने वाले, उसका आपको रिजल्ट क्या दिखाई देगा, क्या रिजल्ट दिखाई देगा? समझो हम रोज योग का अभ्यास करते हैं तो उस रोज योग के अभ्यास करने के उपरांत मुझे परिणाम क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बोलो? हाँ, एक एक बोलो। हाँ बोलो, संस्कारों में परिवर्तन। बहुत मोटी बात है ये, मतलब बहुत गुह्य बात है, कोई और थोड़ी बात सुनाओ, और सुनाओ और क्या होगा? आचरण में आएगा। अच्छा, और एक जो बोलता है वो हाथ खड़ा करो, क्या बोला आपने? हल्कापन लगेगा। अच्छा, और हाँ, व्यर्थ पे कंट्रोल होगा, और क्या होगा? हाँ जी, कर्मेंद्रियों में शीतलता आएगी, जैसे कहते हैं। हाँ बोलिए। चेहरे पर गंभीरता और नम्रता दिखाई देगी। जैसे कहते हैं योगी जो हैं, उनके विचार, उनका व्यवहार, उनकी वाणी, तीनों से सेवा होगी, यही तो योगी जीवन है ना। और जैसे एक बहन ने कहा, यानी अगर मेरा योगी जीवन है तो जो मैंने योग लगाया है, जो मैंने ज्ञान सुना है, वो मेरे कर्मों से, मेरे व्यवहार से रिफ्लेक्ट होगा, मेरे एक्शन में दिखाई देगा। अब मान लीजिए हम कहते हैं बड़ी, सबको बड़ी शांति रखनी चाहिए, शांति रखनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आप यहां से गए ट्रेन में, यहां तो बड़े शांत है, अब यहां से जब हिसार वापस जा रहे हैं तो रास्ते में जो आपकी बर्थ है उसमें कोई दूसरा आगे बैठ गया। अब उस समय क्या मेरी वो शांति बनी रहती है? अभी मैं यहां इस एनवायरमेंट में हूं, एवरीथिंग इज फेवरेबल, यहां से भी बाहर निकले सब कुछ अनुकूल है, सभी परिस्थितियां मेरे फेवरेबल हैं, मेरी इच्छा के अनुसार हैं। लेकिन जब मैं ट्रेन में चढ़ी या चढ़ा, मैंने देखा कि मेरी सीट्स के ऊपर दूसरे लोग आके बैठ गए हैं, अब उस समय मेरे मन की शांति बनी रहती है? योगी जीवन वो है, योगी लाइफ वो है, योग लगाने के बाद विपरीत परिस्थितियों में भी जो मैंने ज्ञान सीखा है, जो मैंने ज्ञान सागर से ज्ञान पाया है, वो मेरे एक्शन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। अगर वो दिखाई नहीं देता है तो सचमुच क्या मैंने उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया है? सोचने की बात है ये, तभी तो उसको योगी कहेंगे ना। ऐसे ही दूसरा एक मिसाल, जैसे बहन सुना रही है कि अगर हमने योग लगाया है तो योग लगाने से क्या होता है, हमारी कर्मेंद्रियां जो हैं वो शांत और शीतल हो जाती है। इसीलिए संतों ने एक भक्ति में कहते हैं, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, कहते हैं ना ऐसे। यानी अब अगर हम योग तपस्या लगा करते हैं, हमारा योगी जीवन है, योगा अभ्यास करते हैं, तो हमारी कर्मेंद्रियों में शीतलता आ जाएगी। अब हम अपने आप से पूछें कि सचमुच क्या मेरी कर्मेंद्रियां शांत हो चुकी हैं, उनमें शीतलता है? सब जगह साइलेंस है, मैं भी साइलेंस में हूं, लेकिन अचानक कोई आकर इस प्रकार का व्यवहार करता है तो उस समय मेरी स्थिति कैसी बनती है? एक होता है कि अगर मैं जवाबदार हूं, उस चीज का रिस्पॉन्सिबल हूं, मुझे कुछ ठीक करना है तो मैं वहां से उठूंगा या मैं उठूंगी जाऊंगी, उस बात को ठीक करूंगी। लेकिन ना मुझे लेना, ना मुझे देना, ना मुझे जवाबदारी दी गई है, लेकिन फिर भी मेरी बार बार कर्मेंद्री जो है उस तरफ जाती है, मेरा मन उस तरफ जाता है, तो हम अपने आप से पूछें कि क्या मेरी कर्मेंद्रियां सचमुच शीतल और शांत हो चुकी हैं? क्योंकि योग के रिजल्ट है ना। और अगर हम साकार बाबा को सामने रखें, साकार बाबा का जो जीवन था वो एक हमारे सामने मिसाल है। योगी जीवन का भी और योगा अभ्यास का भी। आपने सुना होगा बड़े बड़ी वरिष्ठ बहनों से, दादियों से, कि बिल्कुल लास्ट लास्ट में बाबा का जो अभ्यास था, योग के प्रति जो उनका अभ्यास था, वो अभ्यास धीरे धीरे जो है उनका बढ़ता गया, वो बढ़ाते गए। ये तो हम सुनते हैं कि रात को जाग जाग के बाबा बहुत योग किया करते थे, योगा अभ्यास किया करते थे, लेकिन अंत में, लास्ट लास्ट में बाबा ने अपने योग का अभ्यास जो है वो बहुत बढ़ा दिया। बाबा जिसे बात भी करते थे बहुत कम शब्दों में, जल्दी से थोड़े शब्दों में किसी सामने वाले की बात समझ जाते थे। बात करते करते बाबा जैसे यहाँ है ही नहीं, गुम हो जाते थे। और साथ साथ बाबा का योगी जीवन भी था, और कैसे वो योगी जीवन था, बाबा का व्यक्तित्व ऐसा था। मुझे याद है मैं 1968 में साकार बाबा से मिली, बहुत छोटी थी, लेकिन अगर मुझे कोई चीज इम्प्रेस की तो वो था बाबा का व्यक्तित्व। क्योंकि बाबा का जो व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी थी, वो सारी आध्यात्मिकता से सरोबार थी। देखते ही अलौकिकता, एक न्यारापन दिखाई देता था। अब आप सोचिए 10-12 साल की हो, आज का 10-12 साल और उस समय का 10-12 साल बड़ा फर्क है। आज तो बहुत एक्सपोजर है ना बच्चों को, और उस समय उनके व्यक्तित्व से ही हम प्रभावित हुए कि समथिंग डिफरेंट, कोई एक अलौकिक पर्सनालिटी है। बाबा का व्यक्तित्व ही ऐसा था। इसी प्रकार जैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे आपको कोई देखे और आपको देखते ही कोई ये सोचे ये तो अल्लाह लोक है, हमारा जीवन ऐसा हो। सब कुछ करते हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, जो हमारी जॉब्स है जॉब्स पर भी जाते हैं, बच्चों की भी केयर करते हैं, कहीं फर्ज अदाई होती है वो भी करना होता है वो भी करते हैं, प्रवृत्ति में कई प्रकार के लेन देन होते हैं वो भी कर रहे हैं वो भी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगना चाहिए कि ये कुछ डिफरेंट है। हमारे जीवन से ये दिखाई देना चाहिए कि हम योगी जीवन वाले हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना पड़े? तो मैं आपको ज्यादा बातें नहीं, आज 2 या 3 बातें ही सुनाऊंगी, क्योंकि योग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किस चीज का है? हम योग कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं योग, आप बताइए। याद वो तो ठीक है, लेकिन याद कैसे करते हैं? मनन चिंतन से, विचार से, संकल्प से, किससे? मन और बुद्धि से। हम योग मन और बुद्धि से लगाते हैं ना। सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? देखिए भक्ति में भी भक्त लोग क्या कहते रहे, हे भगवान तेरा ध्यान लगाते हैं लेकिन मन टिकता ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल योग में यदि कोई चीज प्ले करती है वो है हमारा अपना मन। क्योंकि मन, मन जो है वो अनेक ताने बाने बुनता रहता है। तो अब मुझे योग में क्या करना है, अगर मुझे योगी जीवन बनाना है या योगा अभ्यास करना है, दोनों इंटररिलेटेड हैं और दोनों इम्पोर्टेंट हैं, एक दूसरे के लिए सहायक हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर मुझे ये करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे सबसे पहले राइट यूज ऑफ माई माइंड, यानी मन का सही उपयोग करना। एक होता है यूज करना, दूसरा होता है मिस यूज करना, और तीसरा होता है राइट यूज करना। एक तो हम यूज कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर हम मन को यूज ना करते तो आज यहां तक थोड़ी ना पहुंचते, क्योंकि सब कुछ मन पर आधारित है ना। और एक होता है मिस यूज करना, उसका गलत उपयोग करना, और तीसरा होता है उसका राइट यूज करना, सही उपयोग करना। अब आप देखिए मन क्या है, वास्तव में जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, उसका आधार जो है वो हमारा मन है। मन जो है वो राइट भी सोचता है, रॉन्ग भी सोचता है, सही भी सोचता है, गलत भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है, नेगेटिव भी सोचता है, हर प्रकार की बात मन सोचता है। लेकिन अब मुझे क्या सोचना है ये मुझे देखना है। अब हम बाबा के बच्चे बन गए, आप में से कुछ ऐसे भी हैं, कुछ एक साल वाले, डेढ़ साल वाले, दो साल वाले होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 20 साल वाले होंगे, शायद कुछ ऐसे भी होंगे उससे भी पुराने होंगे, एक मिक्स ग्रुप है जो भी है। अब चलते चलते जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बाबा हम ब्राह्मण कहलाने लगते हैं, और जब हमें मालूम पड़ता है कि हमारी चिंतन की धारा सही होनी चाहिए, तो आम तौर से क्या होता है, जब एक बार ब्राह्मण बन जाते हैं तो धीरे धीरे अशुद्ध ख्यालात वो हमारे जीवन से निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन व्यर्थ व्यर्थ निकलते हैं, और व्यर्थ किसको कहा जाता है, व्यर्थ किसको कहा जाता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता वो व्यर्थ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए, अब मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन इस समय मैं सोच रही हूँ कि रात को जाके मुझे सोना, ये काम करना है, इस समय वो विचार करना, बेशक आपके लिए वो सही है, उस समय सही है, लेकिन एट प्रेजेंट जब आप क्लास में बैठे हैं, तो ये विचार आपका व्यर्थ गिना जाएगा। व्यर्थ विचार कितने चलते हैं हमारे। तो राइट यूज ऑफ माइंड, यानी मन का सही उपयोग करना, इसका मतलब क्या है कि मुझे जिस समय जो विचार चाहिए वही विचार करना। और जब हम योग में बैठते हैं, इसका मतलब मुझे क्या करना है, अपने व्यर्थ को कंट्रोल करना है, बहुत जरूरी है। और जब तक हम व्यर्थ को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक सोचिए हमारे योगी जीवन में निखार कैसे आएगा, क्योंकि व्यर्थ से तो बहुत सारी लीकेज हो जाती है। और वो हम व्यर्थ को कंट्रोल कब कर पाएंगे, जब मेरे अंदर वो समझ डेवलप होगी, वो समझ का विकास होगा। कौन सी समझ, कोई भी बात की जब मनुष्य को समझ मिल जाती है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब वो उस काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आप देखिए, कई हमारे भाई बहन हैं, उनको ज्ञान में चलते चलते काफी समय हो गया, तो कुछ समय के बाद आकर कहते, बहन जी, दीदी, आज मुझे ये बात समझ में आई, अभी तक समझ ही नहीं आई थी। होता है ना ऐसे, हम सबके साथ होता है, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन अचानक वो क्लिक करता है आपको, और वो या कहीं क्लास में सुनते हैं या बाबा की मुरली में सुनते हैं, और फिर आके कहते, दीदी आज मुझे ये समझ में आया कि बाबा ने ये क्यों कहा है। इसी प्रकार मुझे ये समझ आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े मिसाल हैं, क्योंकि मन जो है वो बहुत सशक्त है, कहते हैं माइंड इज वेरी पोटेंशियल, वो इतनी शक्ति है उसके अंदर, लेकिन अगर मुझे समझ में आ जाए तब उसका हम सही उपयोग कर सकेंगे। जैसे आप सभी ने वाल्मीकि का मिसाल सुना हुआ है ना, सुना है ना सभी ने उसका मिसाल, वो क्या करता था, लूट के, हाँ, लोगों को लूट के, तंग करके सब करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उसने साधु को पकड़ लिया था, एक साधु को, तो साधु ने उससे पूछा कि तू ये सब चोरी करके और डकैती करके, लूट के, तू करता क्या है, ये क्यों करता है। उसने क्या जवाब दिया कि मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा, लेकिन ये लूटना, चोरी करना, किसी को तंग करना, ये तो तू पाप का काम करता है, तो जो तू ये पाप का काम कर रहा है, तो क्या तेरे परिवार वाले इसमें हिस्सेदार हैं। तो वो सोचने लगा, उसने कहा, हाँ वो भी होंगे। उसने कहा, नहीं, जाओ तुम पूछ के आओ। वो गया अपने घर में पूछने के लिए, तो उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया, जाके अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने क्या जवाब दिया, परिवार तुम्हारा है, तुम्हारा काम है परिवार को चलाना, अब तुम लूट के चलाओ या तुम कैसे और चलाओ, हम थोड़ी ना पाप के भागी हैं। और यही सवाल जब उसने अपने बच्चों को पूछा, तो बच्चों ने भी इसी प्रकार का जवाब दिया। अब उसी समय उसको ख्याल आया, ये क्या, मैं तो अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ, उसके मन में संकल्प चला और ये कहते हैं मेरे पाप में भागीदार नहीं है। और वहीं पर उसको मन में आ गया, उसने क्या कर दिया, उसने अपने जीवन को परिवर्तित किया। लंबी कहानी है, और वो क्या बन गया, इतना बड़ा वो इतनी उसने साधना की कि उसने क्या किया, आखिर रामायण लिख डाली। आप सोचो उसके मन के अंदर इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी। पहले वो मन की शक्ति कहाँ जा रही थी, दुरुपयोग हो रही थी, लेकिन जब उसको समझ आ गई कि जो मैं कर रहा था वो गलत है और अब मुझे क्या करना है, साधना करने के पश्चात उसने रामायण रच डाली। ऐसी रामायण लिखी कि बहुत लोगों ने रिसर्च करके उसके ऊपर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली। व्यक्ति तो वही था, लेकिन मूल बात कौन सी है, जब उसे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, तब उसने मन की शक्ति का सदुपयोग किया, और पहले वो दुरुपयोग कर रहा था। इसी प्रकार आप देखिए तुलसीदास का मिसाल भी सुनाते ना, उन्होंने क्या लिखा, रामचरितमानस लिखी ना, उनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था ना। जब उनकी पत्नी एक दिन माँ के घर चली गई, तो वो कैसे चले गए कहानी पता है ना आपको उनकी। तब उनकी पत्नी ने देखा कि ये रात को, आधी रात को यहाँ पर कहाँ से आया, तो उसको लगा मेरा नाम भी बदनाम होगा, इसका नाम भी बदनाम होगा। तो उसने कहा, उसने कह दिया, इतना प्रेम यदि तुम राम से करते तो तर जाते। तो उनको भी क्या वकलिक हो गया, उसी समय राम की भक्ति में लग गई और रामचरितमानस लिख डाली। तो मेरा भाव समझा आपने, कि अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि मन सशक्त है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, और उस शक्ति को मुझे कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस तरह से यूज करना है, योग में भी मुझे मन को लगाना है और मन में मुझे कौन से विचार चलाने हैं, तो मुझे व्यर्थ को कंट्रोल करना होगा। और व्यर्थ कंट्रोल कैसे होगा, कैसे कंट्रोल होगा, जैसे कंप्यूटर का जमाना है ना, है ना, कंप्यूटर में क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई लोग बताएंगे, कंप्यूटर जानने वाले क्या करते हैं कंप्यूटर में, हाँ क्या करते हैं, जो वेस्ट फाइल होती है उनको क्या करते हैं, डिलीट करते रहते हैं ना। अगर डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बहुत हैवी हो जाता है ना, और कभी कंप्यूटर हैंग होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। इसी प्रकार अपने मन से ये जो वेस्ट थॉट्स की जो फाइल्स हैं, इतनी भरी पड़ी हैं, उनको डिलीट नहीं करेंगे, उनको निकालेंगे नहीं, तो आप सोचिए मेरा योग लगेगा कैसे। इसीलिए हम हमेशा एक बात कहती हैं कि तीन प्रकार के योगी हैं, कैसे, एक है योग में बैठने वाले, और जब वो योग में बैठते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कब व्हाइट लाइट होगी, गीत बंद होगा और व्हाइट लाइट होगी, और व्हाइट लाइट है तो सोचते हैं कि कब गीत बजेगा और लाइट होगी तो योग में बैठेंगे, और जैसे ही गीत बंद हुआ और व्हाइट लाइट हो गई तो उनका योग भी पूरा हो गया। दूसरे हैं अपना योग में बैठकर कनेक्शन जोड़ने वाले, वो कनेक्शन जोड़ते जोड़ते ही उनका इतना द्वंद्व चलता है कि जब तक वो कनेक्शन जुड़ता है तब तक समय पूरा हो जाता है। और तीसरे कौन से हैं, अनुभव करने वाले, कि अगर मेरा व्यर्थ पर कंट्रोल नहीं होगा तो आप सोचिए योग कैसे लगेगा, है ना। हम फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, और व्यर्थ पर मेरा आज भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो बाबा जैसे कहते हैं कि बच्चे ऐसा ना हो कि अंत में हमें क्या लगे, हम पहले कर लेते तो अच्छा होता था, ऐसा ना हो। इसलिए अपने व्यर्थ को कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहती, दूसरी बात ये है कि मन में ये जो व्यर्थ चलता है, इसमें एक और बात आती है कि हमारे मन में कई बार कई इम्प्रेशंस, जिसको कहते छाप, वो पुरानी छाप जो है ना हमारे मन के ऊपर लगी रहती है। जैसे किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किसी ने कभी मेरा बुरा किया, किसी ने मेरी उन्नति के अंदर विघ्न डाल दिया, किसी ने मेरा काम बनते बनते रोक दिया, तो ये सारी ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो हमारे मन के ऊपर जो है वो छप जाती है। अब जब वो बातें हमारे मन के ऊपर छप जाती हैं, तो वो क्या होती हैं? वो बार बार फिर याद आती रहती है। तो इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में रखूंगी, योग में दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्थान है वो किस चीज का है? वो है स्मृति का। आप देखिए, दुनिया में बहुत सारी योग की किताबें हैं, बहुत लोगों ने योग के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक हमारा बाबा ही है जिन्होंने ये बात कही है, स्मृति का दूसरा नाम योग है। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे मुझे याद करो, यही योग है। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए योग की, कहीं ये नहीं लिखा होगा योग माना स्मृति, स्मृति का नाम योग है, कहीं नहीं होगा ये किताब लिखा हुआ। ये केवल बाबा कहते हैं। यानी स्मृति का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर स्मृति का रोल इम्पोर्टेंट है तो मेरी स्मृति कैसी होनी चाहिए? लेकिन अब स्मृति में कौन सी बातें हैं? जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारी स्मृति में बहुत सारी बातें जो है छपी हुई हैं, कमियों की, कमजोरियों की, दूसरों की बुराइयों की, कई प्रकार के दोषों की, वो सारी हमारी स्मृति के ऊपर बातें जो है छपी हुई हैं। और जब हम साइलेंस में बैठते हैं, जब हम योग में बैठते हैं, योग माना क्या है? साइलेंस। जब हम योग में बैठते हैं, वो बातें जो हमारी स्मृति में छपी हुई हैं, वो बातें फिर मन रूपी पर्दे के ऊपर उभरती रहती हैं। और हम क्या कहते हैं? पता नहीं, वो मुझे बात याद भी नहीं थी, आज मैं योग में बैठी, पता नहीं कहां से याद आ गई। कहते हैं हम ये, अब वो कहां से आ गई? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी मेमोरीज हैं। वो जो हमारा अर्धचेतन मन है उसके अंदर इतनी सारी स्मृतियां पड़ी हुई हैं जिनको अभी भी हमने इरेज नहीं किया है, उनको मिटाया नहीं है। और जब तक उन स्मृतियों को इरेज नहीं करेंगे, तब तक भी हमारा योग, जो प्रॉपर योग लगना चाहिए, वो योग तो नहीं लगेगा। देखिए, योगा अभ्यास क्या है? आमतौर से ये देखा गया है, जब 2 घंटे भट्टी में इकट्ठा बैठना होता है तो कुछ तो बैठ पाते हैं, और कई जो है इधर उधर उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, हिलते रहेंगे, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। बेशक कितने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, और कई ऐसे हैं वो जल्दी से अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं। कारण क्या है? कि हमने अभी तक भी अपने मन को, शुद्ध मन, अभी तक भी अपनी मेमोरीज के अंदर से वो जो अनचाही, अनरिक्वायर्ड, अनवांटेड जो बातें हैं उनको बाहर निकाला नहीं है। जब तक उनको इरेज नहीं करेंगे तो नई स्मृतियां आएंगी नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो पुरानी स्मृतियां हमारे मन में पड़ी हुई हैं उनको मुझे निकालने की आवश्यकता है। और आप देखिए, कभी कभी हमने ऐसा देखा है कि जो बात किसी के दिल को लगी हुई होती है और जिस व्यक्ति ने वो बात की होती है वो व्यक्ति चला जाता है, लेकिन जिसके साथ की है वो उसके मन में बात अभी भी बैठी हुई है। कई बार हम ये बात सोचते हैं, किया तो उसने था, ठीक है, किया किसने था? किया सामने वाले ने था, और मन में किसने बसाया है? राइट? आप सोचिए, ए और बी दो व्यक्ति हैं, किया बी ने और मन में रखा हुआ ए ने। ए ने तो नहीं किया ना, वो तो बी ने किया था, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? ए को। जबकि किया नहीं है लेकिन फिर भी नुकसान ए को हो रहा है। कारण क्या? ए ने बी की बात को अपने मन में बसा के रखा हुआ है। हु इज इन लॉस, नुकसान में कौन है बताइए? नुकसान में कौन है? माताएं पीछे वाली, किसको नुकसान है? बी को या ए को? ए को। सो उन्नति किसकी नहीं होगी? ए की। तो फिर मैं क्यों रखूं अपने मन के अंदर? उसने गलत किया, शत प्रतिशत ये सही बात है, 100% वो गलत है, उसने हमारे साथ गलत किया था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर वो गलत है, उसकी गलत बात को अपने मन में रख के मैं मेरे लिए भी तो सही नहीं हूं, क्यों मैं अपने लिए नुकसान या अपनी प्रगति में बाधा बन रही हूं या बन रहा हूं? या अपने आप को समझ देने की आवश्यकता है ना, अपने आप को समझाने की जरूरत है ना। ये ऐसी ही स्मृतियां, जैसे मैंने बताया, वो व्यक्ति चला जाता है जिसने मेरे साथ गलत काम किया था, लेकिन उसकी अभी भी वो बात मन में बैठी, मुझे याद है फलाने फलाने ने, अभी तो वो है ही नहीं, 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था, अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ, अभी भी वर्णन कर रहे हैं उसका। क्यों? ऐसी बातें हैं या नहीं है? हैं या नहीं है बताइए? ऐसी स्मृतियां हैं ना, कटु स्मृतियां, बिटर मेमोरीज इन माई लाइफ, जो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, उनको हमने मन में बिसा रखा है, उनको भी अपने मन से निकालना बहुत बहुत जरूरी है। कैसे इरेज करेंगे उनको? जैसे बच्चे पेंसिल से लिखते हैं ना, रबड़ होता है ना उनके पास, रबड़ से मिटा देते हैं। है कोई ऐसा रबड़ जिससे मिटा दें इन मेमोरीज को? क्या करेंगे, कैसे करेंगे बताओ, कोई बताना चाहेगा? अच्छी अच्छी याद से, याद में तो सारी बातें याद आती हैं। और कई बार ऐसा देखा है कि याद करने बैठते हैं, एक्चुअली याद नहीं कर रहे होते हैं, फरियाद कर रहे होते हैं, है ना, बाबा उसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। जैसे ही वो कोई बाबा सारे कंप्लेंट्स की फाइल बैठ के सुन रहा हो, सारा बाबा को हम सुनाते रहते हैं। ठीक है, मन हल्का हो जाता है कह देने से, लेकिन वो याद तो नहीं हुई ना हमारी। हाँ, बीती को भूले वो कैसे भूले, बात तो वही है। हाँ, बीती को वो कैसे करे? हाँ, किसने कुछ एक शब्द बोला, यस, भूलना, बिंदी लगाना, याद करना, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो होता है जब तक हम उसको भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे तब तक नहीं जब तक हम उसको क्षमा नहीं करते। और हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि हम वास्तविकता में जो बाबा हमें कहते हैं ना, बच्चे आप में रहम की भावना आनी चाहिए, आप में दया होनी चाहिए, तो वो जो रहम की भावना जो हमारे आसपास है, नजदीक वाले हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा चाहिए। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, कोई सेठ अपने किसी गुरु के पास गया, तो उसने कुछ उसको कहा कि मुझे आप गुड एडवाइस दो। तो उसने उसको ये कहा कि मेरे अंदर जो है ना, हरेक के लिए मैं बहुत बहुत उदारता है सिवाय मेरे पड़ोसी के। तो गुरु ने कहा, सबके प्रति दया छोड़ के अपने पड़ोसी के प्रति दया कर। इसी प्रकार जो हमारे नियर एंड डियर वंस है ना, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे संबंधी हैं, हमारे पास पड़ोसी हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, या जो ब्राह्मण परिवार में जो हमसे रोज मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में भी कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंचाई नीचाई हो जाती है और वो मन में वो बात याद आती रहती है, ऐसा भी होता है। उनके प्रति पहले हमारे मन में क्षमा भाव हो, उनकी गलतियों के प्रति, उनकी बुराइयों के प्रति, उनकी दोषों के प्रति। अचानक देखिए, हर व्यक्ति, एक कहावत है, कहते हैं मनुष्य मात्र भूल का पात्र, ऐसा कहते हैं। अब जो बीके बने वो अभी कोई संपूर्ण तो नहीं बने ना सारे, संपूर्ण बन गए हैं क्या सारे? बन गए हैं क्या? अगर बन गए होते हम यहाँ बैठे होते सारे, हमारे में से एक भी संपूर्ण नहीं बना, तभी तो अभी तक यहाँ बैठे हैं ना। कभी किसी से अचानक गलती हो जाती है, वो कि ठीक है फाइन हो गई ना गलती, अब गलती उसने की अचानक उससे हो गई, चलो जानबूझ के की या अचानक हो गई, मैं अपने मन पे लेके उसको बैठ के बार बार याद करके ये सोचती रहूं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैंने ज्ञान कहाँ डाइजेस्ट किया। लेट गो करो उसको, हो गया फाइन फिनिश, वहीं का वहीं फिनिश कर दो, उसको रिपीट करके और नया मत बनाओ, नई स्मृति क्रिएट मत करो। पहले ही हमारे इस ज्ञान में आने के जीवन से पूर्व कुछ ऐसी स्मृतियां मन के अंदर हैं, तो उनको ही मुझे इरेज करना है, तो नई स्मृतियों को हम और क्रिएट न करें, इस बात का हम ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात, जो पहले से समझो कोई हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं, तो हम क्या करें, उनको हम क्षमा कर दें। आप सामने जाके क्षमा नहीं कह सकते हैं, आप अपने मन में उनको सामने लाके, अपने मन और बुद्धि में सामने लाके उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए और उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखिए। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ या ना? उसके लिए क्या करना होगा? हाँ क्या करना होगा उसके लिए? हाँ अपने मन में इतनी स्पेस क्रिएट करनी होगी, बड़ा विशाल दिल चाहिए। अगर मेरा मन संकुचित है तो हम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते। दूर वालों को करना बहुत आसान है, लेकिन जो नजदीक वाले हैं उनको हम क्षमा कर सके, उनको हम माफ कर सके, उसके अंदर बहुत हमारा बड़ा विशाल दिल चाहिए।
प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
हमारी बात चल रही थी, एक है व्यर्थ को कंट्रोल करना, दूसरा है भूलना। हा? भूलेंगे कैसे? जब क्षमा करेंगे। और ये तीसरा इरेज करना, वो कैसे करेंगे? जो पूर्व स्मृतियां हैं इतनी सारी बनी हुई हैं, उनको कैसे इरेज करेंगे? देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने जो हमें सुनाई हैं, बाबा की मुरलियां, इतनी सारी किताबें, इतने सारे संस्मरण जो हम सुनते आते हैं, उनको अब अपने सामने लेकर आए, उन स्मृतियों को कलेक्ट करते जाएं। जैसे बाबा देखिए कई बार कहते हैं, बच्चे मुझे और मेरे वर्षे को याद करो, कभी बाबा कहते हैं बच्चे नई दुनिया को याद करो, कभी बाबा कहते हैं चक्र को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो। तो ऐसी ऐसी जो बातें बाबा कहते हैं, अगर आप उसके अंदर अपनी मन और बुद्धि को ले जाएं, तो ये जो पुरानी कटु स्मृतियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप निकलती जाएंगी, क्योंकि निकालने के लिए मुझे कुछ तो नया अपनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये नेचर का नियम है कि वो कोई भी स्थान खाली रहने नहीं देता है। आप देखिए, यदि आपको कहीं से मान लीजिए कहीं पर कुछ एक गिलास में मैला पानी है, आप उसमें साफ पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, मैला पानी अपने आप निकलते निकलते एक समय ऐसा आएगा उसमें साफ पानी ही होगा। इसी प्रकार ये मन है, हम इसमें शुद्ध चिंतन भरते जाएं, शुद्ध चिंतन भरते जाएं, और रोज हमें शुद्ध चिंतन का कितना सब कुछ माल मिलता है। एवरीडे 4 pages of Murali, 3 pages of Murali, इट इज फुल ऑफ गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। जो मुरली है वो शुद्ध विचारों से भरी पड़ी है, जितने हम चाहें उतने हम उसमें से ले सकते हैं। उनको हम कलेक्ट करते जाएं तो पुरानी स्मृतियां हमारी निकलती चली जाएंगी। और नेक्स्ट बात कि देखिए, जो स्मृति आती है वो दो प्रकार की स्मृति हमें आती है आमतौर से, एक जो जिनको हम लाइक करते हैं और दूसरा उसकी भी स्मृति आती है जिनको हम डिसलाइक करते हैं, जिनको पसंद नहीं करते। हम उनको उनके अवगुणों से याद करते हैं और जिनको हम पसंद करते हैं उनको उनकी अच्छाइयों से हम याद करते हैं, और जिनको हम अच्छाइयों से याद करते हैं उनको जब मिलेंगे ओम शांति भी करेंगे ना, ऐसे जैसे खिला हुआ गुलाब, हाँ चेहरा भी हमारा ऐसा होगा। और जिनको हम पसंद नहीं करते हैं अगर वो सामने मिल जाए तो उसके साथ अगर ओम शांति करना भी पड़े तो कैसे करेंगे, जैसे औपचारिकता से, हाँ जैसे फॉर्मली किसी को कुछ कहना पड़ता है ना तो ऐसे करेंगे, है ना ये हमारे साथ। क्योंकि जो हमारी जिनको हम पसंद नहीं करते वो भी हमारे मन में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप से हमारी याद में आते रहते हैं। और बाबा की याद क्या है, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्मृति, वो बाबा की याद है। इसीलिए हमें क्या करना है कि ये जो भी जिनके साथ हमारे संबंधों में कहीं भी किसी भी प्रकार की कटुता है, कहीं भी किसी प्रकार का हमें लगता है कि इनके साथ हमारा नहीं बनता है, ये अच्छे नहीं है, चलो हम और कुछ नहीं कहते, उनके साथ हम किनारा करके रहते हैं, बाबा कहते हैं इन सब बातों को अभी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि योगी का कोई भी शत्रु नहीं होता है, योगी के सब मित्र होते हैं। ये छोटी छोटी बातें जब हमारे मन में बसी रहती हैं तो हमारे योग में ये बाधा बनती हैं। इसलिए हमको क्या करना है, मैं बता रही थी क्षमा करना है, और क्षमा जो है ये बहुत बड़ा गुण है। मैनेजमेंट की भाषा में भी आजकल कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, आप माफ करो और भूल जाओ, और हम तो योगी हैं, और अगर हम माफ नहीं करेंगे तो बाकी कौन माफ करेगा किसी को, इस समय ऐसा है। और हम हमेशा ये बात सोचते हैं कि माफ करने में, समझो गलती सामने वाले ने की है और हम उसको माफ करते हैं, हमको ऐसा लगता है उसमें ज्यादा फायदा हमारा है, उसका ज्यादा फायदा नहीं है। क्यों? हमारा सोचना ऐसा है कि अगर समझो हम माफ करते हैं किसी की गलती को, उसमें ज्यादा फायदा हमारा है, उसका ज्यादा फायदा नहीं है। क्यों? क्यों? लेकिन हम इस टर्मिनोलॉजी में कभी सोचते नहीं है, हम सोचते हैं हम क्यों माफ करें, गलती तो उसने की ना, मैं क्यों माफ करूं, हम ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन माफ करने में ज्यादा फायदा हमारा है, उसका फायदा नहीं है। हाँ, हमारे से भी गलती हो सकती है, इसलिए। और बताओ, लाइन क्लियर हो जाती है, लोग लगने लग जाते, क्या कहा आपने, क्योंकि अगर हम उसको फॉरगिव नहीं करते इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने माइंड का बहुत सारा स्पेस जो है उसकी गलतों की गलतियों से ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर वो ऑक्यूपाइड प्लेस है तो उसमें शिव बाबा कैसे आके बैठेगा, आप सोचो, या अच्छी स्मृतियां कैसे बैठेंगी। और अगर मैं फॉरगिव कर देती हूँ, मैं उसको माफ कर देती हूँ, तो माफ करने से क्या होता है, हमारा मन तो क्लियर है ना, मेरी तो क्लीन स्लेट है ना, उस क्लीन स्लेट पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसमें ज्यादा फायदा हमारा होता है। लेकिन हम कभी ऐसा सोचते नहीं है, हम सोचते हैं हम क्यों माफ करें, लेकिन हम योगी हैं, इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस बात को भी नहीं सोचना है। तो ये जो दो चार बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि मन जो है बड़ा सशक्त है, योग के अंदर दो चीजें ही मुख्य काम करती है, एक स्मृति काम करती है और एक मन काम करता है, इन दोनों को सशक्त और इन दोनों को बहुत ही हमें शुद्ध बनाने की आवश्यकता है। जितना मेरा मन क्लीन और क्लियर होगा, जितनी मेरी स्मृति श्रेष्ठ होगी, उतना योगा अभ्यास करने में मुझे मदद मिलेगी, और जितना हमारा योगा अभ्यास होगा उतना मेरा योगी जीवन होगा। और योगी जीवन जब हमारा होगा तो योगी जीवन बनने से ऑटोमेटिकली बहुत से लोग आपके जीवन से प्रभावित होकर आपके पास आएंगे कि आपका जीवन ऐसा कैसे बना। यूं तो अभी भी लोग आते होंगे आपके पास, लेकिन जितना हमारा होना चाहिए और जैसा हमारा होना चाहिए, जैसा बाबा हमसे चाहता है वैसा हमारा जीवन होना चाहिए, वो जीवन हमारा बन जाएगा। तो इन दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे। मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनाती हूँ क्योंकि सुबह से सुनते ही रहते हैं आप लोग, और यदि हम बाबा के ज्ञान की एक भी बात को अपने जीवन में लाना शुरू करें तो हमको ऐसा लगता है कि एक बात से बहुत सारी दूसरी बातें भी हमारे जीवन में आने लगती हैं, और एक बात पर ही हम फोकस हो जाएं कि मुझे कौन सी बात को ध्यान में रखना है, तो उस बात के लिए हम पुरुषार्थ जब करते हैं तो करते करते बहुत सारे फायदे हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। रही परिचय की बात, नाम तो आपको मालूम ही है और मैं आपको संक्षिप्त परिचय अपना दे देती हूँ। हम लौकिक में तीन बहने हैं जो बाबा के यज्ञ में समर्पित हैं। आप शायद, आप में से बहुत से भाई बहन शायद जानते भी होंगे, सुधा बहन मॉस्को में जो रहती हैं वो हमारी लौकिक में बड़ी सिस्टर हैं, और एक और बहन है राधा बहन, वो भी मुंबई में ही रहती हैं। मैं भी मुंबई में ही हूँ, मैं सांता क्रूज में हूँ और वो गोरेगांव में रहती हैं। ऐसे हम तीन बहने हैं। ज्ञान हमने दिल्ली से लिया, दिल्ली कमला नगर सेंटर। हमारी टीचर जो है सबसे पहले गुलजार दादी है। हमें अलौकिक में जो पालना मिली है, जगदीश भाई, गुलजार दादी और चक्रधारी बहन, और वैसे तो बाकी सभी दादियों के समीप रहने का बहुत मौका मिला है, और ज्ञान में चलते हुए 46 साल हो गए हैं। यानी बचपन से ही, ऑलमोस्ट बचपन से ही हमें ये ज्ञान मिला, और पहले तो हम दिल्ली में ही थे, फिर पढ़ाई पूरी करने के पश्चात मुंबई में जाना हुआ, और लगभग 33rd ईयर है, ये 33वां साल है हम सांता क्रूज मुंबई में ही रहते हैं और वहीं पर सेवा कर रहे हैं, और अभी कुछ समय के लिए आपके पास आए हैं, यहाँ पर आपसे मिलने का मौका मिला।
योगी जीवन के लिए हमें किन बातों का अटेंशन रखना चाहिए? दीदी ने बहुत ही हम सभी को विस्तार से ये सब बातें बताई। हम दीदी का एक हाथ की ताली बजा करके थैंक्स करेंगे। ओम शांति।